हरे कृष्ण। तो आज हम लोग दूसरे सत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पहले कल का पुनरावृत्ति करें कि कल हमने क्या चर्चा की। तो पहले सत्र में हमने हम सभी के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की क्या आवश्यकता है इस विषय पर चर्चा की, और इसके अंतर्गत देखा कि ये मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिला है, उसका मुख्य हेतु है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 सबसे बड़े कष्ट, इनका उपाय ढूंढने के लिए, इनका उपाय ढूंढना के साथ बाकी अन्य सभी जो छोटे छोटे कष्ट हैं वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, क्योंकि ये सभी समस्याओं के कष्टों के मूल हैं। और हमने ये भी देखा कि इन 4 समस्याओं का यदि समाधान हमने मनुष्य जीवन में नहीं किया और अपना ध्यान केवल इस शरीर की साज सज्जा में ही लगाया, तो अगला जीवन दोबारा से पशु योनि मिलेगा। क्योंकि यदि हम केवल आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजों में ही जो मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं जो समान हैं, यदि उसी में ही हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं तो फिर अगली योनि में पशु योनि के रूप में इन्हीं 4 चीजों को करने की खूब अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्योंकि पशु योनि में ये आहार निद्रा भय मैथुन ज्यादा अच्छे तरह से किया जा सकता है। मनुष्य योनि तो वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए बनी है, भगवान कौन है, हम कौन है, ये भौतिक सृष्टि क्या है, क्यों इसकी रचना की गई है, क्यों हम बूढ़े होते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों बीमार होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए ही मनुष्य योनि बनी है। तो इस आधारभूत आवश्यकता को देखते हुए फिर हमने देखा कि जो ज्ञान हम भगवद गीता का ज्ञान लेने जा रहे हैं वो प्राचीनतम सनातन ज्ञान है, शास्त्रों का सार है और शास्त्र सनातन है, और शास्त्रों का उद्गम स्वयं भगवान से हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता से हुआ है, ये हमने देखा। ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं, इस पर हमने थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी। एक हमने देखा आरोह पंथ और एक दूसरा अवरोह पंथ। आरोह पंथ आपको याद होगा जिसमें जो हमारा जो आधुनिक ज्ञान है, विज्ञान है, उसका जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो ये आरोह पंथ का तरीका है, जिसमें हम अपने इस संसार को देखते हैं, फिर कुछ अनुसंधान करते हैं और फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान, अपनी इंद्रियों पर आधारित जो ज्ञान लिया जाता है, उस प्रकार के ज्ञान को आरोह पंथ कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो आरोह पंथ है इसमें समस्या क्या आती है कि क्योंकि ये ज्ञान का तरीका हमारी इंद्रियों पर आधारित है और क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए इस तरीके से जो भी हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो अंततः अपूर्ण होते हैं, उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रमाण है कि हमारे विज्ञान की सभी पुस्तकें हर साल बदलती रहती हैं क्योंकि वो अपूर्ण है। तो इस विषय पर हम और थोड़ी चर्चा आज प्रारंभ करेंगे इस 2 ज्ञान प्राप्त करने के तरीके में, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये शास्त्र तो मात्र एक अंधविश्वास है। तो जब तक हमारे मन से ये भ्रांति नहीं निकलेगी कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो कोई मात्र अंधविश्वास नहीं है, वो एक विज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ स्तर का विज्ञान है, तो तब तक हम उसे हृदय से अपनाएंगे नहीं। जो सरल स्वभाव के हैं वो अपना सकते हैं, विशेष रूप से माताएं जिन्हें विश्वास होता है हाँ भगवान श्री कृष्ण है, राम है, लेकिन जिनको तर्क वितर्क में रुचि है, जो हर एक चीज को समझ करके ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, वो समझें कि जिस विज्ञान, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान, वो वास्तव में एक विज्ञान है। तो आजकल हमारे बच्चों को जो ज्ञान स्कूलों में दिया जा रहा है, जो आरोह पंथ है, उसमें हमको सिखाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं और जो नहीं देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए अक्सर जब भी हम शास्त्रों की बात करते हैं तो बच्चे या कोई पढ़े लिखे लोग ऐसा ही तर्क करते हैं, किसने देखा, किसने देखा, राम है, कृष्ण है, किसने देखा, और जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम कैसे विश्वास कर लें, आत्मा है, किसने देखा। तो क्या हम केवल उन्हीं चीज पर विश्वास कर सकते हैं जो हम देखते हैं? तो हम वास्तव में देखें तो हमारी देखने की जो शक्ति है या अपने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान लेने की शक्ति है वो बहुत सीमित है। इन जड़ इंद्रियों से तो हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं, बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं। जैसे आप में से जो लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, तो आप जानते होंगे कि हमारी जो देखने की शक्ति है उसकी एक कुछ ही रंग को हम देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में विवग्योर कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी को ही हम देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको हम नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सुनने की शक्ति भी, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये कान सुन सकते हैं, उसके ऊपर नहीं सुन सकते हैं। तो विशेष रूप से हर मनुष्य के अंदर चार ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से मनुष्य अपनी इंद्रियों के बलबूते पर जितना भी प्रयास कर ले उसका जो ज्ञान होगा वो अपूर्ण होगा। तो वो चार कमियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियों की शक्तियां सीमित हैं। अभी यदि यहां लाइट बंद हो जाए, हमारी आंखें यदि ठीक भी हैं तो भी मैं इस माइक को भी नहीं देख पाऊंगा, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे नहीं देख पाएंगे। भले ही आपकी देखने की शक्ति ठीक है पर यदि अंधेरा हो जाए तो आप नहीं देख सकते, अपने हाथ को भी नहीं देख सकते यदि आपकी आंखों के सामने आपका हाथ भी रखा जाए। निर्भर हैं हम प्रकाश पे। फिर हमने उदाहरण दिए सुनने की शक्ति, हमें चंद सूरज दिखता है छोटा सा पर वास्तव में वो हमारे इस पृथ्वी से भी कहीं कहीं गुना बड़ा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। दूसरी कमी है हम सब मनुष्यों में कि हम सब भ्रमित हो जाते हैं, हम सब भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा भ्रम जो इस पूरे संसार में व्याप्त है, हर व्यक्ति को, हर जीव को है, कि हर व्यक्ति सोच रहा है कि वो शरीर है, जो एक भ्रम है। वास्तव में हम आत्मा हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यही भ्रम है कि वो शरीर है। शरीर तो मात्र एक आवरण है, लेकिन हर व्यक्ति को ये भ्रम है कि हम शरीर हैं। तीसरी कमी हर व्यक्ति में होती है कि वो गलती करता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो गलती नहीं करता हो। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। जैसे पहले समझा जाता था कि जो ये मस्तिष्क है, ब्रेन, उसका कार्य है खून को ठंडा करना, लेकिन आज हम जानते हैं कि मस्तिष्क का कार्य बिल्कुल अलग है। ऐसे अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। दुर्भाग्यवश सभी को नोबेल प्राइज मिल जाता है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज देने वाले हैं वो भी अपूर्ण है। चौथी कमी है, हर मनुष्य में दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए हर व्यक्ति धोखा दे सकता है, ये प्रवृत्ति रहती है। इसके भी अनेक अनेक प्रमाण हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक गण भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। जो उनको कोई अनुसंधान करने पर जो खोज मिलती, यदि वो उनके निष्कर्ष पहले के निष्कर्ष से अलग होती है तो उसको पलट करके बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, उसके हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। वो तो हम सब जानते हैं कि हम सब एक दूसरे को धोखा देने में झिझकते नहीं हैं, यदि हमारे आन बान पे आ जाती है तो इस प्रकार से हर मनुष्य के अंदर ये जो चार कमियां हैं, इसकी वजह से मनुष्य अपने आप से जो भी कोई ज्ञान लेता है वो अंततः अपूर्ण होता है। अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होने की क्षमता, गलतियां करना और धोखा देना। तो इन्हीं अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर हमारा मस्तिष्क काम करता है, हमारी बुद्धि काम करती है। इसलिए इस बुद्धि से जो भी निष्कर्ष इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेने पर हम निकालते हैं वो सब अंततः अपूर्ण होते हैं। और जैसा हमने बताया, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आज तक जितनी भी ज्ञान इतनी इंद्रियों के आधार पर मनुष्य ने प्राप्त किया है उसे बार बार बदलना पड़ता है, वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। आज एक ज्ञान सही है, कल को दूसरा ज्ञान आएगा उससे बेहतर, पहले वाले ज्ञान को गलत सिद्ध हो जाएगा। तो ये क्या दिखाता है कि वो ज्ञान अपूर्ण था। उसी प्रकार से आज जो हमारे पास ज्ञान है कल वो भी अपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। तो ये प्रमाण है कि ये जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अपूर्ण रहता है। तो फिर क्या संभावना है कि हम भगवान परम सत्य के विषय में इस अपूर्ण तरीके से जान सकें? जो तरीका हमारी अपूर्ण इंद्रियों पर आधारित है, कैसे परम सत्य को जो कभी बदलता नहीं है, जो हर समय हर व्यक्ति के लिए हर जगह एक सा रहता है, उस सत्य को हम कैसे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से जान सकते हैं? तो इसलिए जैसा हमने कल प्रारंभ किया था, आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करने के किसी और तरीके को देखने की, नहीं तो कभी हमें जानकारी नहीं हो पाएगी। अपने इस इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य ज्ञान में ही जब भ्रांति हो रही है तो इंद्रियों के जो परे का ज्ञान है उसे कैसे जान पाएंगे इस अपूर्ण तरीके से? इसलिए दूसरा तरीका है अवरोह पंथ, डिसेंडिंग प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हम पूर्ण व्यक्ति से, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, उससे हम ज्ञान लेते हैं। आरोह पंथ में अपूर्ण व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान लेता है, अवरोह पंथ में पूर्ण व्यक्ति ये ज्ञान देता है, प्रकाशित करता है। इसका हमने उदाहरण देखा, याद है किसी को, सज्जन को? अवरोह पंथ का एक बहुत सुंदर सरल उदाहरण हमने देखा था। हाँ जी, हैं? हाँ, हमने देखा हमारे पिता हम जानते हैं, हमारी माँ हमको बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, और हम सही स्वीकार करते हैं वो सही है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, जिसमें हम ज्ञान के पूर्ण स्रोत से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का पूर्ण स्रोत हमको ज्ञान देता है, उस तरीके को अवरोह पंथ कहते हैं। तो वास्तव में यदि हमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है कि ये सृष्टि क्यों बनाई गई, किसने बनाई, आखिर हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ, जीवन का हेतु क्या है, मृत्यु पर्यंत क्या होता है, ऐसे जो विषय जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए ऐसे विषयों को अचिंत्य कहा गया है। अचिंत्य वो हमारी जड़ इंद्रियों, जड़ बुद्धि के द्वारा कभी भी ग्रहण हम नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं उनको। इसीलिए ऐसे विषयों को जानना है तो एकमात्र तरीका है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, यदि उससे हम सुन सकें, वो हमको समझा सके, तो ही एकमात्र संभावना है कि हम यथारूप सही प्रकार से बिना किसी संदेह के, बिना किसी गलती के समझ सकते हैं इन सब गूढ़ प्रश्नों के उत्तर को। तो कई बार ऐसा प्रश्न फिर पूछा जा सकता है, तो आप तो ये सोच के चल रहे हैं कि एक कोई भगवान है, एक कोई रचयिता है इस सृष्टि का, कोई बनाने वाला है। तो पहले तो यही हमको शंका है कि कोई बनाने वाला है या नहीं, क्योंकि आजकल हमारे स्कूलों में तो यही सिखाया जा रहा है कि ये सब अपने आप बन गया है। तो ये कोई समझना मुश्किल चीज नहीं है। एक छोटी सी एक घड़ी है, अगर हम थोड़ी देर विचार करें इस घड़ी को बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी बुद्धि लगी है, इसमें लोहा है, उस लोहे को पहले खान में से निकाला गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, मिश्रित करके अलग अलग प्रकार के इसमें मेटल हैं वो सब मिलाए गए, उसके बाद इसका मूल्य जिससे कि सब लोग इसको खरीद सकें, सस्ते सस्ता कैसे बन पाए, इस पर कितना विचार किया गया होगा। फिर इसकी जो पूरी मशीनरी है कितनी जटिल है कि अपने आप वो एक एक सेकंड पर सुई चलती है, एक एक मिनट पर सुई चलती है, एक एक घंटे पर सुई चलती है। ये एक छोटी सी घड़ी बनाने के लिए कितने बुद्धिमान व्यक्तियों का ये परिश्रम का नतीजा है ये घड़ी। तो ये इतना जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, जो इस घड़ी के मुकाबले तो कितना अधिक जटिल है, कितना अधिक सुनियंत्रित, अच्छे तरीके से सब चल रहा है। हर समय सूरज अपने आप समय पर आ जाता है, हर समय अपने आप अस्त हो जाता है, हर ग्रह अपने अपने समय पर, सभी अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। जैसे आप जाएं हमारी भारतीय रेल, तो सभी रेलगाड़ियां अपनी अपनी पटरियों पर चल रही हैं, तो तुरंत हमको पता लगता है कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए जो इंजीनियर्स हैं वो लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं। तो ये जो इतना जटिल ब्रह्मांड है वो कैसे अपने आप से बन गया होगा। ये ब्रह्मांड छोड़िए, जैसे हमने कल भी देखा, ये जो हमारा छोटा सा शरीर है उसमें एक एक कोशिका का यदि हम विस्तार से देखें तो एक एक कोशिका ब्रह्मांड जितनी जटिल है, उसकी एक एक व्यवस्था अंदर की, सब चीज बहुत तरीके से सब बनी है। तो कैसे हम, क्या ये आसान नहीं है स्वीकार करना कि निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड के पीछे किसी की बुद्धि होगी और कुछ प्रयोजन होगा। ये घड़ी बनी है बिना किसी प्रयोजन के नहीं बनी है, सोच समझ के बनाई गई है। इसका हेतु क्या है? ये बनाई गई है समय के देखने के लिए। ये माइक बनाया गया है जिससे आवाज और ये एम्पलीफायर ज्यादा लोगों को सुनाई दे सके। हर चीज किसी ना किसी हेतु को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन आजकल हमारे को क्या सिखाया जा रहा है स्कूलों में, ये ब्रह्मांड की संरचना बम विस्फोट से हो गई। हमारे सब बच्चे सीख रहे हैं भगवान वगवान कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और ये सब बन गया। जैसे हम कहें कि ये जूनियर क्लब कैसे बना, एक दिन अचानक आंधी आई, तूफान आया, और अगले दिन उठ के देखा रेत पड़ी हुई थी और कुछ लोहा पड़ा हुआ था, एक दिन बहुत तूफान आया और सुबह उठ के देखा तो ये तो जूनियर क्लब बन गया। तो कोई विश्वास करेगा इस बात पे? ये जूनियर क्लब ये बनाने के लिए सोच समझ करके इसको एक एक ईंट के ऊपर ईंट रख के बनाया गया है, तब ये बना है। एक छोटा सा जूनियर क्लब जब अपने आप विस्फोट से या तूफान से नहीं बन सकता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? तो ये तो साधारण बुद्धि की बात है। हमारे आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक निरे मूर्ख हैं, जिन्हें इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप से नहीं बन सकता है। तो जब कोई एक ऐसा बुद्धिमान रचयिता स्वाभाविक तरह से हम समझ सकते हैं होना ही चाहिए, तो कोई ना कोई तरीका उनके पास होगा जिससे वो हमें समझा सके, हमारे से बात करने का कोई ना कोई तो एक कम्युनिकेशन संपर्क का कोई ना कोई तो तरीका होगा। ये समझना तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि एक रचयिता का होना मुश्किल बात नहीं है समझना कि एक कोई ना कोई बनाने वाला रचयिता तो होगा ही। तो जब वो होगा तो उसने ये क्यों बनाया है उसको समझाने के लिए उसके पास कोई ना कोई तरीका तो होगा। जैसे ये माइक बनाया गया तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, किताब आती है, जो बनाने वाली कंपनी है वो बताती है कि ये माइक का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, क्यों बनाया गया है, इसको कैसे चलाना है, खराब हो जाए तो क्या करना है, सब बनाने वाला मैनुअल में लिख के देता है। आप उसे पढ़िए, समझिए और चलाइए। उसी प्रकार से इस सृष्टि को समझने के लिए हमें इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है इस सृष्टि के विषय में, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृष्टि क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, उस ज्ञान को यदि हम लें तो ही एकमात्र संभावना है कि हम इस सृष्टि को, अपने को संपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं, सही प्रकार से समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से अनुसंधान करके तो आज तक संभव हुआ भी नहीं है और होने वाला भी नहीं है। तो इसी कहते हैं अवरोह पंथ, साक्षात भगवान से जानना कि ये सृष्टि क्या है, हम कौन हैं, उसे कहते हैं अवरोह पंथ। क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं जान सकता, रचयिता से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं जान सकता। तो ये जो अवरोह पंथ है और जो आरोह पंथ है, अवरोह पंथ मतलब ये जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र, वो भगवान की वाणी ऐसा स्वीकार किया जाता है वैदिक शास्त्र में। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म मतलब ये शास्त्रों का एक नाम ब्रह्म भी है, अक्षर भगवान को अक्षर भी कहते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता भौतिक जगत में। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये भगवान की वाणी है शास्त्र, किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है। व्यासदेव जी जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो खुद इसकी पुष्टि करते हैं कि ये शास्त्र का उद्गम कहां से हुआ है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान प्रतिपादित करते हैं। फिर उनसे गुरु परंपरा में ये ज्ञान उनके पुत्र नारद मुनि और इस प्रकार उनके पुत्र, उनके शिष्य व्यासदेव जी, ऐसी श्रृंखलाएं हैं कई, उनके अंतर्गत ये ज्ञान आता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले निह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, ये ज्ञान इस प्रकार गुरु परंपरा में चला आ रहा था। पहले मैंने विवस्वान को दिया था, यह हमने कल चर्चा की, विवस्वान ने मनु और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और उस प्रकार ये गुरु परंपरा में चला आ रहा था। लेकिन समय के चलते ये महान ज्ञान गुरु परंपरा के नष्ट होने से समाप्त लुप्त प्राय हो गया, और अभी मैं यही ज्ञान, पुराना वही पुरातन ज्ञान दोबारा तुम्हें दे रहा हूं। तो ये तरीका है जिससे भगवान इस ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आया हुआ शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हम भगवान से संपर्क जोड़ सकते हैं। सबसे पहला ये तरीका है, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में भी, और समय आने पर सिद्धि प्राप्त करने पर हम परमात्मा से भी संपर्क जोड़ते हैं। पर प्रथम तरीका है गुरु शिष्य में आए गुरु के माध्यम से इन शास्त्रों को जो हमें समझाते हैं उस तरीके से हम समझते हैं कि भगवान क्या हमसे कहना चाह रहे हैं, भगवान का जो ये ज्ञान दे रहे हैं इस सृष्टि के हमारे विषय में वो क्या है। तो ये जो अवरोह पंथ है इसे समझने के ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस ज्ञान को समझने जा रहे हैं भगवद गीता को। तो इस ज्ञान को, यानी शास्त्रों के ज्ञान को और जो भौतिक ज्ञान है उसको समझने का, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पॉइंट है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। भौतिक ज्ञान को समझने का तरीका और शास्त्रों को समझने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। भौतिक ज्ञान को हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं क्योंकि वो आरोह पंथ का तरीका है। पर शास्त्रों को कोई व्यक्ति सोचे कि वो संस्कृत पढ़ने के बाद, संस्कृत में पीएचडी करने के बाद सब भगवद्गीता को खोल के बैठ जाएगा, सभी पुराणों को खोल के बैठ जाएगा, सभी फिलोसोफर्स की उसके ऊपर टिप्पणी खोल के बैठ जाएगा और फिर अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा कि शास्त्रों का मर्म क्या है, तो कभी भी शास्त्रों के मर्म को नहीं जान पाएगा। जैसा कि आजकल अधिकतर लोग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शास्त्रों को भी उसी प्रकार समझा जाता है जैसे इस भौतिक ज्ञान को हम अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं पढ़ करके अपने ज्ञान के आधार पर। नहीं, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारी बुद्धि जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पर आधारित है अपूर्ण है, तो वो कैसे अपने आप से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए यदि शास्त्रों को कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी संस्कृत पढ़ने पर या तपस्या से या किसी भी तरीके से स्वयं पढ़ने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो फिर वो अवरोह पंथ नहीं रह जाता, वो भी आरोह पंथ होके और अपूर्ण हो जाता है। फिर वो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो उस व्यक्ति की अपनी अपूर्णता की वजह से अपूर्ण प्रतीत होता है। तो ये तरीका नहीं है। इसीलिए शास्त्रों कहा गया है रिवील्ड नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो प्रकाशित किया जाता है। तो इस विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन मुख्य ही जीवादौ स्वयं एव इसूर्त्य अधा। अतः भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इन जड़ इंद्रियों के द्वारा समझे नहीं जा सकते, इस जड़ बुद्धि के द्वारा नहीं समझे जा सकते। तो कैसे समझे जा सकते हैं? सेवोन मुख्य ही जीवादौ, सेवोन मुख होकर के, भगवान की सेवा करके, और जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तब वो स्वयं सेवोन मुख्य जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अधा, स्वयं अपने को स्फुरित करते हैं, स्वयं अपने को प्रकाशमान करते हैं उस व्यक्ति के सम्मुख जिनकी सेवा से वो प्रसन्न हुए हैं। ये तरीका है शास्त्रों को समझने का, जानने का, न कि अपनी बुद्धि से, अपनी पढ़ाई से, अपनी पीएचडी डिग्री से। विनम्र भाव से, सेवा भाव से जो भगवान की सेवा करता है, जिसका प्रारंभ जीवा से होता है, सेवोन मुख्य ही जीवादौ, जीवा से प्रारंभ होता है, तो भगवान को बुद्धि से नहीं, भगवान को जीवा से समझा जाता है। ये बड़ी अजीब बात लगेगी, सब लोग भगवान को समझने का प्रयास करते हैं बुद्धि से, पर भगवान को बुद्धि से नहीं, भगवान को जीवा से समझा जाता है, क्योंकि जीवा से प्रारंभ होता है भगवान की सेवा का, भगवान के दिव्य नामों के श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होता है भगवान की सेवा का। इसलिए भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन और श्रवण करने से जैसे जैसे हम सेवा करते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, तब भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं हमारे सम्मुख। नहीं तो हमारे हाथ में नहीं है कई भगवान को समझना। शास्त्रों का अध्ययन 1 करोड़ 2 करोड़ साल तक भी करते रहेंगे, भगवान के बारे में ABCD भी नहीं समझ पाएंगे। और हम देख रहे हैं बड़े बड़े दार्शनिक लोग अध्ययन कर रहे हैं पूरा जीवन, संस्कृत के उनको भगवद्गीता के सभी श्लोक कंठस्थ हो सकते हैं, पर वास्तव में भगवान कौन है, क्या है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अपनी बीड़ी सिगरेट तक भी वो नहीं छुड़ा सकते अपने इस ज्ञान से, जो इतना पवित्र ज्ञान है। ऐसे महान महान दार्शनिक अपनी इंद्रियों में भी विषम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या भगवान को जानेंगे? वो लोग नहीं जान पाए हैं, केवल दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं अपनी टिप्पणियां लिख लिख करके, क्योंकि वो तरीका ही गलत है। सेवोन मुख्य जीवादौ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं भगवद्गीता में 4th अध्याय में, कि गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा था लेकिन समय के चलते ये नष्ट हो गया। स एवायम मया ते अद्य योगम प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, वही पुराना ज्ञान आज मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। क्यों? भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम इस रहस्य को समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो स्पष्ट है कि भगवान ये ज्ञान देते हैं, प्रकाशित करते हैं अपने भक्तों को, स्वाभाविक है। मान लीजिए आपके पास कोई ज्ञान है, सीक्रेट, बिल्कुल रहस्य में, आपके बिल्कुल रहस्य का ज्ञान है, आपको बिल्कुल प्रिय ज्ञान है, आप ऐसे ज्ञान को किस व्यक्ति को देना चाहेंगे? अपने मित्र को या अपने दुश्मन को? अपने मित्र को देना चाहेंगे आप, अपने हितैषी को देना चाहेंगे, अपने शत्रु को नहीं, जो आपसे शत्रुता रखता है उसको नहीं, जो आपसे द्वेष रखता है उसको नहीं। तो सरल है समझना कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो रहस्य का ज्ञान है ये मैं देता हूं अपने भक्तों को, और अर्जुन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम ही समझ सकते हो, दुर्योधन नहीं समझ सकता। दुर्योधन भी वही है, भगवान भी वही है, पर वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकता, समझा भी नहीं, क्योंकि असुर है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, भक्त और असुर। भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं, और असुर जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये शास्त्रों का ज्ञान असुरों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए है, भक्त समझते हैं, असुर नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये प्रकाशित किया जाता है भगवान के द्वारा, अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जाता। सेवा करिए, सेवा करते हैं भगवान की भक्तों के संरक्षण में, और जब भगवान हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होते हैं तब वो प्रकाशित करते हैं इस ज्ञान को। तो इस प्रकार से हमने आधारभूत रूप से देखा कि ये जो अवरोह पंथ है कैसे ये विशिष्ट है, आरोह पंथ के समझने के तरीके से बिल्कुल विशिष्ट है, इसके लिए आवश्यकताएं बिल्कुल अलग हैं। तो इस आधारभूत जानकारी के साथ अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भगवद गीता को समझने के लिए आदर्श विद्यार्थी के अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो योग्यता चेक करते हैं, कॉलेज में एडमिशन होता है योग्यता चेक होती है, इंजीनियरिंग में किसी को सिलेक्शन चाहिए, मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए, तो यूं ही किसी को सिलेक्शन नहीं दिया जाता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, तुमने प्लस टू किया है कि नहीं किया है, और प्लस टू किया है तो भी ठीक है लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, तो कुछ योग्यताएं देखी जाती हैं। उसी प्रकार से इस भगवद गीता को समझने की भी योग्यताएं हैं, और क्योंकि यहां हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करने के लिए एकत्र हुए हैं इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम भी जान लें कि भगवद गीता को समझने की योग्यताएं क्या हैं और हम में वो योग्यताएं कितनी हैं, और नहीं है तो उन योग्यताएं को कैसे हम प्राप्त करें। अगर योग्यता नहीं होगी तो भगवद गीता जानने पर भी, सुनने पर भी, पढ़ने पर भी, लिखने पर भी, समझाने पर भी भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार से हम देखेंगे फिर गुरु की योग्यता क्या है, समझाने वाले की योग्यता क्या है। ज्ञान के लिए अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही योग्य होने चाहिए, तभी ज्ञान प्रवाहित होता है। अगर शिष्य अयोग्य है, गुरु योग्य है तो भी बेकार, और शिष्य योग्य है पर गुरु अयोग्य है तो भी बेकार, दोनों योग्य होने चाहिए। तो इसलिए हम दोनों की योग्यताएं देखेंगे, शिष्य भगवद गीता को समझने के लिए आदर्श शिष्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और आदर्श शिक्षक की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भगवद गीता का आदर्श विद्यार्थी कौन है, ये भगवद गीता का आदर्श विद्यार्थी कौन है, अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं साक्षात अर्जुन को यह ज्ञान दिया है। तो यदि हम में अर्जुन जैसे गुण हैं तो हम इस भगवद गीता को यथारूप समझ सकते हैं, और दुर्योधन जैसे गुण होंगे तो कभी नहीं समझेंगे। तो अभी हम अपने हृदय को परख लें कि हमारे अंदर कितने गुण अर्जुन जैसे हैं और कितने गुण दुर्योधन जैसे हैं, और फिर देख लें कितनी समय में आएगी हमें भगवद गीता। और जो गुण दुर्योधन जैसे हैं उसे निकाल करके बाहर फेंकें और अर्जुन के गुणों को अपने हृदय में प्रतिपादित करें, तब तो भगवद गीता की ABCD समझना प्रारंभ होगा, नहीं तो नहीं। तो देखें क्या गुण है, एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण है जिज्ञासा, उत्कंठा, इस ज्ञान को प्राप्त करने की उत्कंठा, तीव्र इच्छा। किस ज्ञान को? वो ज्ञान जो श्रेयस है, प्रेयस नहीं। दो प्रकार का ज्ञान होता है, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब जो हमारी परम हित के लिए होता है, और प्रेय जो तुरंत मिलने वाले हित के लिए होता है। जैसे बच्चे यदि खेलना चाहते हैं तो वो खेलना उनका प्रेय है, उससे तुरंत सुख अनुभव होता है। लेकिन माँ बाप बोलते हैं बेटे पढ़ाई करो, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि पढ़ना उनके लिए क्या है, श्रेय है, वो उनके आगे के काम में आने वाला है, भविष्य में काम में आने वाला है। तो भगवद गीता समझने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर परम कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, परम सत्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे जो गहन विषय हैं इस संसार में, भगवान कौन है, हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, ये श्रेय विषय है। ऐसे विषयों को जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, तो वही केवल भगवद गीता को समझने के लिए योग्य है, पहली योग्यता। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसे प्रश्न ही नहीं है, जिसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अनेक अनेक हजारों हजारों मनुष्य हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्य में से विरले हैं जो ये प्रश्न करते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम कौन हैं, हम क्यों यहां आए हैं। नहीं तो सब लोग अपने रोटी कमाने के चक्कर में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में ही पूरा 24 घंटे, पूरा महीना, पूरा साल और पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। उनसे पूछो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आज तक ये प्रश्न तो उनके दिमाग में आया ही नहीं, ना तो किसी ने उनसे पूछा। बच्चों के दिमाग में कभी कभी आती है चीजें। हमको याद है जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब ऐसे प्रश्न उठते थे, ये सब क्यों है, ये सबको किसने मनाया है, क्यों मनाया है, ये जन्म मरण क्या है, ये इसका हेतु क्या है। तो हमको कोई उत्तर नहीं मिला, किसी का उत्तर था ही नहीं। अरे ये सब प्रश्न इनका कोई पता नहीं कैसे कैसे हुआ है, अभी छोड़ो, अभी तुम्हारी 10वीं की पढ़ाई है, 10वीं की पढ़ाई करो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न बाद में सोचना। बस 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद सिलेक्शन, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद फिर विवाह हो जाता है, विवाह के बाद बच्चे, उसके बाद सब नौकरी की चिंता, उसके बाद फिर बच्चों को पालने की चिंता, ऐसे करके पूरा जीवन कब खत्म हो जाता है सेकंड में पता भी नहीं लगता। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब लगता है, जब समीप आती है मृत्यु तब लगता है अभी तक जितना कुछ भी कमाया वो तो सब बेकार किया, क्योंकि अभी तो ऐसा समय आ गया जब कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तब फिर सब रोते रहते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तो श्रेय के लिए काम नहीं किया। तो भगवद गीता उस व्यक्ति के लिए है जो केवल अपने पेट को पालने के तक ही संतुष्ट नहीं है, जानवरों की तरह से। जानवर भी यही सब अपने पेट पालने के लिए कर रहे हैं, और मनुष्य यदि बुद्धि लेकर के भी यही कार्य कर रहा है तो क्या फायदा है। उस व्यक्ति के लिए भगवद गीता नहीं है, वो कभी नहीं समझ सकता। ये केवल बैठ करके, चेयर पे बैठ करके पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के नहीं है कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं जिससे स्कूल में कॉलेज में पीएचडी डिग्री मिल गई, अध्यापन का कार्य मिल जाएगा, हमारी रोजी रोटी चलेगी। भगवद गीता वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता जो रोजी रोटी कमाने के लिए भगवद गीता पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता है अर्जुन जैसे उत्सुक व्यक्ति के लिए जो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जिस विषम स्थिति में मैं आ गया हूं, अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है अधर्म क्या है, कार्पण्य दोष अपहृत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, यश्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम् शाधीमान त्वाम प्रपन्नम्। हे कृष्ण, कृपणता की वजह से मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूं कि मेरे लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। कृपया करके मेरे जो श्रेय है, यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेय है, जो श्रेयस्कर है, बेस्ट है, कृपया करके उसे बताइए। शिष्यस्ते अहम, अभी मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यता स्वीकार करता है। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूं, अभी अनुशासन कीजिए। अभी फ्रेंड, मित्र की तरह से हमारा संबंध खत्म, अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अभी बताइए मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो भगवद गीता समझने के लिए ऐसी उत्सुकता चाहिए, श्रेय को जानने के लिए, परम हित को जानने के लिए। फिर ये उत्सुकता होने के बाद दूसरी योग्यता जो भगवद गीता को जानने वाले विद्यार्थी में होनी चाहिए कि उसे ये जो अवरोह पंथ है इसमें उसकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। यानी उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये जो शास्त्र हैं ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया परम सत्य का ज्ञान है। बहुत से लोग भगवद गीता को शास्त्र कल्पना समझते हैं, ये भगवद गीता वास्तव में हुआ नहीं था, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, ये पांच पांडव तो हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांच पांडव थे नहीं, कोई कृष्ण थे नहीं, ये तो एक कल्पना करके एक बनाए गए पात्र हमको कुछ समझाने के लिए। जो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, जो सोचते हैं कि सब शास्त्र कल्पनाएं हैं, यानी उनकी श्रद्धा नहीं है कि शास्त्र भगवान की वाणी है, वो लोग योग्य नहीं है भगवद गीता को समझने के लिए। उन्हें कभी भगवद गीता समझ में नहीं आ सकती, शास्त्र नहीं समझ में आ सकते जो इसे कल्पना का विषय समझ रहे हैं। तो भगवद गीता के विद्यार्थी को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि ये शास्त्र कल्पना नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। और ये श्रद्धा का आधार क्यों श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, ये आप बोलेंगे हम तो बिना देखे किसी पर श्रद्धा करते नहीं, हमने तो देखा नहीं कि भगवान ने बोला ये, तो हम श्रद्धा कैसे कर लें। तो क्या आप हर चीज पर जो श्रद्धा करते हैं आपने खुद देखा होता है वो? जो भी आज आप विश्वास कर रहे हैं, जो भी आप श्रद्धा कर रहे हैं, क्या वो सब आपने अपनी आंखों से देखे हैं? वही उदाहरण, आपके पिता आपके पिता हैं, ये आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा है। आप जो वैज्ञानिकों की बात आज तक सब मान रहे हैं, क्या वो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखी है? कितनी सारी हमारे विज्ञान में चीजें हैं जो हम केवल श्रद्धा के आधार पर ले रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं इससे सही है। हम कोई किताब पढ़ते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी साइंटिस्ट ने बताया है इतनी है, और हम हाँ भाई इतनी दूरी है लिख देते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं। आपने देखा है खुद नाप करके? आपने विश्वास किया? हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। बताइए तो कौन सा ज्ञान है ऐसा जो आप बिना श्रद्धा के अपनाए हैं? प्रारंभ से लेकर अभी तक और आगे तक भी श्रद्धा तो आधार रहता है। आपको श्रद्धा है अपनी इंद्रियों पे, जो आप ज्ञान ले रहे हैं इंद्रियों के द्वारा वो सही है, तभी तो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो भी तो विश्वास है, वो भी तो श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो हमें करनी पड़ेगी, उसका कोई दो चारा नहीं है। हम साइंटिस्ट पर श्रद्धा करें या शास्त्रों पर श्रद्धा करें, यही प्रश्न है। श्रद्धा तो हमें करनी पड़ती ही है और करते ही है, तो कौन अधिक विश्वसनीय है यही प्रश्न है। वैज्ञानिक अधिक विश्वसनीय है या हमारे शास्त्र अधिक विश्वसनीय है, तो इसका निर्धारण आप कीजिए। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जिनकी हर थ्योरी बदलती रहती है, हर दो साल में नई नई थ्योरी आती है, वो अपने आप ही सिद्ध करते रहते हैं कि हमारे पहले का विज्ञान ज्ञान गलत था। ऐसे वैज्ञानिक अधिक विश्वसनीय है या ये शास्त्र का ज्ञान अधिक विश्वसनीय है जो समय के चलते बदल नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे हर चीज सही है, सिद्ध हो रहा है आधुनिक विज्ञान से भी, कौन अधिक विश्वसनीय है? जो वैज्ञानिक इच्छा काम क्रोध इत्यादि से ग्रसित है, उनका पर्सनल लाइफ, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान अधिक विश्वसनीय है या ऋषि मुनियों के द्वारा इंद्रियों पर जिन्होंने पूरा संयम किया है, ऐसे लोगों के द्वारा जो जिनके अंदर काम क्रोध स्वार्थ इत्यादि नहीं है, केवल परहित की इच्छा है, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान अधिक विश्वसनीय है? तो ये हमको देखना है। तो हमने कल भी कुछ उदाहरण दिए थे शास्त्रों में से लेकर के, कैसे हम श्रद्धा कर सकते हैं कि शास्त्र वास्तव में परफेक्ट है, भगवान की वाणी है। तो हमने देखा था भूगोल, मां के गर्भ के अंदर शिशु का जब जैसे बढ़ता है, किस किस महीने पर कैसे कैसे उसका वृद्धि होता है, कौन से महीने पर हाथ बनते हैं, कौन से महीने पर पैर बनते हैं, कब आंखें खुलती हैं, कब हृदय की धड़कन शुरू होती है, सब विवरण श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध में है, जिसकी रचना 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने की, जब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था। तो कहां से वो ज्ञान आया, कैसे संभव हो पाया जो आज बिल्कुल सटीक निकला है। तो ये एक उदाहरण। फिर हमने देखा भविष्यवाणियां जो सही सिद्ध हुई हैं, हमारे वैज्ञानिक यदि भविष्यवाणी करते हैं कि कल सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण हो जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि साइंटिस्ट लोगों को बहुत जानकारी है, ये बहुत ज्ञानवान है। तो हमारे शास्त्रों में तो कल का नहीं, हजार हजार साल आगे तक का भविष्यवाणी जो हुई है वो सही सिद्ध हुई है, तो फिर क्या ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं, उनसे अधिक श्रेष्ठ नहीं। आप कलयुग का विवरण पढ़िए भागवतम के 12वें स्कंध में, और अभी आज के खुद देख लीजिए कि कैसे उन लोगों को पता था कि आज ऐसा होगा। सब कलयुग का विवरण उसमें दिया है जो आज हो रहा है। तो ये जो जानकारी है, जो शास्त्र है, इस आधार पे हम वो श्रद्धा रख के चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल श्रद्धा ही, बस श्रद्धा के आधार पर ही जीना है, खुद अनुभूति भी होगी। भगवान बताएं भगवद्गीता में ही, इसलिए हम कह रहे हैं ये विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है जो चीज की हम परख कर सकें। तो आप इस ज्ञान की परख भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आवगमम, भगवान बोलते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष आवगमम, प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभूति कर सकते हैं। यदि इस ज्ञान को श्रद्धा के आधार पर जो आधारित है, जो हमने आपको उदाहरण दिए, उस आधार पे छोटी सी श्रद्धा को लेकर के यदि आप शास्त्र में दिए गए तरीके को अपने जीवन अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि शास्त्र में जो उससे परिणाम बताए गए हैं ऐसा ऐसा होगा, वो आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जैसे हम कोई अनुसंधान को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, पहला करते हैं उससे परिणाम निकलता है, जो बताया गया है वही निकलता है, आपको श्रद्धा आती है सही है। फिर दूसरा स्टेप करते हैं फिर परिणाम वही निकलता है, यस कहीं सही जा रहे हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में बहुत डिटेल में सब बताया है कि यदि आप शास्त्र को अपने जीवन अपनाना शुरू करते हैं तो किन किन कड़ियों से आप गुजरेंगे, किन किन स्टेजेस से गुजरेंगे, आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे उन सबको, साक्षात भगवान से हम बात भी कर सकते हैं यदि हम उस प्रोसेस को अपनाएंगे। तो प्रत्यक्ष भी है पर समय आने पर, उसके अपने तरीके पर जाने पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शास्त्र जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है, यह अंधविश्वास नहीं है। तो एक शिष्य के अंदर, आदर्श शिष्य के अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए इस बात का कि यह शास्त्र भगवान की वाणी है, इसलिए मुझे इसे यथारूप लेना है। दूसरा गुण, तीसरा गुण, शिष्य को विनम्रता से इसको पढ़ना चाहिए, अपने को दीन हीन समझते हुए, ना कि घमंड से, जानते हुए कि मैं क्या हूं, कुएं का मेंढक हूं। जैसे कुएं का एक मेंढक है, उसे उसके लिए संसार क्या है, वो कुएं की जो दीवारी है वही उसके लिए संसार है, उसे उसके आगे का कुछ पता नहीं है कि इससे अलग भी कुछ होता है। यदि उस कुएं, यदि कोई समुद्र का मेंढक अंदर आ जाए और उससे बोले मैं समुद्र से आया हूं, तो वो कुएं का मेंढक बोलेगा एक समुद्र कितना बड़ा होता है, तो समुद्र का मेंढक बोलेगा बहुत बड़ा। तो कुएं का मेंढक सोचेगा बहुत बड़ा, दुगना दुगना इससे, नहीं 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 बहुत बड़ा, अच्छा दुगना नहीं तो तिगना होगा, अच्छा चौगना होगा। वो कितना भी अपनी बुद्धि को दौड़ा ले कभी समझ नहीं पाएगा कि समुद्र का मतलब क्या है। एक कुएं का मेंढक जिसकी छोटी सी दायरा है वो क्या समझेगा कि समुद्र का मतलब क्या है। ऐसे ही एक एक कूप मंडूक हम लोग हैं, छोटे से जीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या जानते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। हमें लगता है साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इतना सा जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को, इतना सा जानते हैं और वो भी अपूर्ण रूप से जानते हैं। इस शरीर को ही नहीं जानते, एक कोशिका को नहीं जानते, ये वैज्ञानिक खुद स्वीकार करते हैं। जितना अधिक हम कोशिका के बारे में जानते हैं उतने अधिक हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। यस, यही होता है। इसलिए जो वास्तव में वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो लोग भगवान को शरणागत होते हैं, वो विश्वास करते हैं यस एक सुप्रीम पावर है, भगवान है, हम कुछ नहीं। और जो छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं उछलते रहते हैं, अदकल गगरी छलकत जाए। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत हीन हैं, और जब तक भगवान हमको नहीं बताएंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे इस ज्ञान को, हमारी अपनी क्षमता नहीं है अपनी बुद्धि पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी इंद्रिय के आधार पर इस ज्ञान को लेने की। तो इस प्रकार से बहुत विनम्रता से हमें इस ज्ञान को जानते हुए कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, सेवा की भावना से, जैसे अर्जुन ने अपने को जानते हुए कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं है, भगवान से बड़े नहीं, हम भगवान के सेवक हैं, इस दृष्टि से, सेवा की भावना से इस ज्ञान को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि भगवद्गीता का मास्टर बनने के लिए मैं भगवद्गीता घोट करके पी जाऊंगा और फिर प्रवचन दूंगा, पैसा कमाऊंगा, प्रशंसा लूंगा, इस भावना से कभी भगवद्गीता को नहीं समझा सकता। बल्कि जानते हुए कि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और उनकी सेवा तो इसको लेना चाहिए, तीसरी क्वालिफिकेशन। चौथी योग्यता शिष्य में होनी चाहिए कि उसे विश्वास होना चाहिए शास्त्र भगवान की वाणी है, और यहां शास्त्रों का जो ये अंग है श्रीमद् भगवद्गीता जिसको सुनाने वाले हैं श्री कृष्ण, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य की पराकाष्ठा है, ये उसे विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कोई फिलोसफर नहीं है, मैं भी एक फिलोसफर हूं, श्री कृष्ण भी एक दार्शनिक है, देखता हूं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हाँ, ये श्लोक ठीक बोले, जो मैं सोच रहा हूं वही ये श्लोक में बोल रहे हैं, इसलिए ये श्लोक तो सही है, पर ये अगले श्लोक में जो बोले ये मेरे को नहीं लगता सही है, इसलिए ये गलत बोल दिया। हाँ, ये श्लोक ठीक लगता है। इस भावना से भगवद्गीता को नहीं समझाया था, भगवद्गीता को बोलने वाले श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान है, वो महान योगी महान पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान है। इसलिए भगवद्गीता में जब व्यासदेव जी ने लिखा, जहां जहां भगवान बोलना शुरू करते हैं वहां कृष्ण उवाच नहीं लिखा, क्या लिखा, श्री भगवान उवाच, बाकी में संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, पर कृष्ण के विषय में नहीं लिखा कृष्ण उवाच, क्योंकि कृष्ण अर्जुन संजय की तरह से सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इसलिए स्पष्ट होना चाहिए विद्यार्थी को कि भगवद्गीता को बोलने वाले साक्षात भगवान है। इसकी पुष्टि स्वयं अर्जुन भी करते हैं, हमने बोला अर्जुन आदर्श विद्यार्थी हैं, तो अर्जुन ने इसी प्रकार से भगवान को स्वीकारा है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हैं, आदि देव हैं, देवताओं के आदि हैं, परम पवित्र हैं, परम धाम हैं। तो अर्जुन स्वीकार करते हैं कि आप भगवान हैं। और क्यों स्वीकार कर रहा हूं मैं ये, ऐसा नहीं कि मैं आपका मित्र हूं इसे स्वीकार कर रहा हूं, नहीं, असित देवल व्यास सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि वैदिक शास्त्रों के पारंगत आचार्यगण ये स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। इस आधार पर अर्जुन कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कल की क्लास में कि कैसे श्री कृष्ण भगवान है, सभी शास्त्रों का ये सार है, व्यासदेव जी ने बताया है और सभी शास्त्रों में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ये शिष्य को कम से कम थ्योरिटिकली ये क्लियर होना चाहिए कि भगवद्गीता को बोलने वाले कोई असाधारण पुरुष, कोई एक महान योगी, कोई एक दार्शनिक नहीं, बल्कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए विनम्रता से उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर अभी प्रश्न उठता है, अर्जुन को तो साक्षात भगवान के दर्शन थे, वो तो उनका मित्र था, उनको तो स्वयं भगवान ने यह ज्ञान दिया, पर हम लोगों का तो यह सौभाग्य नहीं है कि हम श्री कृष्ण से हमारा सीधा संपर्क है, तो हम कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमारे अंदर योग्यताएं हो भी, हम इच्छा भी कर रहे हैं और योग्यताएं भी हैं, पर कृष्ण तो अभी हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान गुरु परंपरा में आता है। यदि हम भगवान से साक्षात नहीं ले पा रहे हैं सौभाग्यशाली नहीं है इतने, तो कोई बात नहीं। यदि हम भगवान से आने वाली अधिकृत गुरु परंपरा से अपना संबंध जोड़ लें तो वही ज्ञान जो अर्जुन को प्राप्त हुआ हमें भी प्राप्त हो सकता है। तो अभी महत्व आता है गुरु शिष्य परंपरा का। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुमेव उत्तमम्। गुरु की शरण में जाओ, अगर ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। बिना गुरु के, अधिकृत गुरु, गुरु परंपरा में आए हुए गुरु के और कोई तरीका नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। वही बात अवरोह पंथ, भगवान से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो बिना अधिकृत गुरु के शरण में जाए हुए अर्जुन भगवान की शरण में गए, उसी भावना से उन्हीं योग्यताओं से हम यदि किसी अधिकृत गुरु की शरण में जाकर के विनम्रता से ज्ञान पूछेंगे, जब वो हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होंगे तो ऐसे गुरु ये ज्ञान हमको प्रकाशित करेंगे, जैसे भगवान ने अर्जुन को किया। वही प्रोसेस है, लेकिन वहां भगवान सीधे कर रहे हैं, यहां भगवान की प्रतिनिधि कर रहे हैं, क्योंकि गुरु मतलब होता है भगवान के प्रतिनिधि। तो अभी प्रश्न फिर ये उठता है, तो फिर गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु के लक्षण क्या है, कौन व्यक्ति अधिकृत माने कि अधिकृत गुरु है। आजकल दुर्भाग्य से अनेक अनेक लोग हैं जो अपने गुरु कह रहे हैं, पर यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हम खुद, आप लोग देखिए कि गुरु कौन है, कौन कहलाने लायक है गुरु। तो अध्यापक कौन बनता है, जो पहले अच्छा शिष्य रहा हो वही अध्यापक बन सकता है। बिना शिष्य बने, बिना विद्यार्थी बने कोई अध्यापक नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से गुरु कौन बन सकता है, सबसे पहले तो वो अच्छा शिष्य रहा हो, अर्जुन के समान उसके अंदर सभी गुण हो, जो शिष्य के हमने गुण देखे वो सब गुण गुरु में होने चाहिए कम से कम। यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवान है ये श्रद्धा, उत्सुकता इस ज्ञान को प्राप्त करने की, श्रेय की पूर्ण विश्वास कि ये साक्षात भगवान के द्वारा है और रियल है, कल्पना नहीं है, ये सब गुण उसके अंदर भी होने चाहिए। क्योंकि शिष्य के अंदर चाहिए तो गुरु के अंदर भी चाहिए, क्योंकि तभी वो शिष्य बना होगा। इसके अलावा और कौन कौन से गुण चाहिए गुरु में, कि गुरु ने भी ये ज्ञान इसी प्रकार से अपने एक अधिकृत गुरु से लिया हो, यानी गुरु शिष्य परंपरा में वो आ रहा हो, सबसे पहली कंडीशन। कोई भी व्यक्ति बोलता है कि हम गुरु हैं, क्या वो भगवान श्री कृष्ण से अधिकृत गुरु परंपरा में संबंधित है कि नहीं, क्योंकि भगवान बताए हैं एवं परंपरा प्राप्त में मम राज ऋषि विदु, गुरु परंपरा में ही ये ज्ञान आ सकता है क्योंकि अवरोह पंथ है, नहीं तो नहीं। तो शास्त्र में बताया गया है संप्रदाय विहीन ये मंत्र ते निष्फला मत, जो गुरु अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के बिना जो कभी मंत्र दिए जाते हैं वो सब निष्फल होते हैं, उस सबका कोई फायदा नहीं होता है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए बताया गया उसी श्लोक में, पद्म पुराण का श्लोक है, इसीलिए कलयुग के अंदर चार अधिकृत गुरु परंपराएं होंगी, भगवान से प्रारंभ होती, भगवान श्री कृष्ण से। एक ब्रह्म संप्रदाय, जो भगवान से ब्रह्मा जी को यह ज्ञान आया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, मध्वाचार्य और उन्हीं की श्रृंखला में श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्हीं की श्रृंखला में श्री प्रभुपाद जो इस्कॉन है वो उसी परंपरा में आता है। दूसरा श्री संप्रदाय, भगवान से श्री यानी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी से रामानुजाचार्य, और उस संप्रदाय में जो साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय है। तीसरा रुद्र संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण, शिव जी और उनकी एक परंपरा रुद्र, जो आजकल लगभग विलुप्त है, जिसके अनुयायी लुप्त प्राय हैं, ये श्रृंखला एट प्रेजेंट नहीं उपलब्ध है। और चौथा कुमार संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद चार कुमार, चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, उनके द्वारा जो परंपरा, निम्बारकर आचार्य उनकी जो परंपरा है, ये बताया गया है कलयुग में चार ऑथराइज गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आएगा, जैसे ऑथराइज यूनिवर्सिटी होती है उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में वो होने चाहिए, और बाकी सब गुण होने चाहिए, और उन्हें शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो शिष्य को समझा सके सही क्या है गलत क्या है। वो शास्त्र में पारंगत होने चाहिए, ये आवश्यक है गुरु के लिए कि वो शास्त्र में पारंगत हो, किस शास्त्र में क्या किस लिए कहा गया है, और वो शास्त्र के बिना और कुछ ना बोले, जो उसने अपने गुरु से सुना है वही बोले, ना तो उसमें कुछ जोड़े ना तो उसमें कुछ घटाए, अपने मन से ना तो कुछ जोड़े ना तो उसमें कुछ घटाए, जो का क्यों प्रस्तुत करे एज इट इज यथारूप, न कि अपने विचार मेरे हिसाब से अभी ऐसा होना चाहिए, अभी इसको बदलने की जरूरत है, ये पुराना हो गया अभी ज्ञान, अभी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो, कुछ घटा दो, नहीं। वो गुरु परंपरा में भी आएगा तो भी वो उसका ज्ञान बेकार हो जाएगा। यदि कोई गुरु अपने मन की चीज लगाता है तो यथारूप उसको प्रस्तुत करना चाहिए। फिर एक और गुरु का गुण है, अपनी इंद्रियों पर उसका संयम होना चाहिए, वो इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, वो इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां ही संयम में नहीं है वो क्या गुरु बनेगा, वो क्या ये गुण दे, क्योंकि ये ज्ञान समझने के लिए तो इंद्रियों का संयम जरूरी है, तो समझाने के लिए तो कितना जरूरी है, तो संयम जरूरी है अपनी इंद्रियों पर। और गुरु ने ये ज्ञान लेकर के अपने गुरु से इसको आत्मसात किया है, रियलाइज किया है, साक्षात्कार किया है, वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है, जिसने साक्षात्कार किया है इस ज्ञान का। तो कैसे हम समझ सकते हैं किसने साक्षात्कार किया है, कोई बोले मैंने भगवान को देखा है, हाँ आपने भगवान को देखा है साक्षात्कार, उसने किसको देखा है हमें क्या पता, केवल किसी व्यक्ति कहने से कि मैंने भगवान को देखा है वो साक्षात्कार नहीं कहा जाता। तो शास्त्र का निचोड़ है कि हम सब भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारा नित्य परम धर्म है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण बताए हैं भगवद्गीता में भी, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सभी शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, सभी शास्त्रों का रचयिता मैं हूं, सभी शास्त्रों को बनाने वाला मैं हूं। तो शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो साक्षात्कार किया है जो पूरी शक्ति से दिन रात बिना किसी अन्य हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा है, वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है। उसको हम कहेंगे कि उसे साक्षात्कार किया है, जिसका अपना और कोई हेतु स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, उसके जीवन का एक ही हेतु रह गया है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है। तो ये गुरु के लक्षण है। तो थोड़ा दो मिनट के अंदर हम देखेंगे कि गुरु कौन कौन नहीं है, क्योंकि दोनों चीज बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा गुरु कौन कौन नहीं है। गुरु वो नहीं है जो अपने मन से किताबों का अध्ययन करके किसी को समझा रहा है, नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। गुरु वो नहीं है जो पैसा कमाने के लिए गुरु बन रहा है, दक्षिणा लाओ 500 रुपए मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, 500 रुपए रख दो तुम्हारी दीक्षा हो गई, उसका धंधा नहीं है गुरु बनना। गुरु सेवा के लिए, भगवान की सेवार्थ गुरु पद स्वीकार करता है, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो पैसा कमाने के धंधे में पड़े हैं, तो वो लोग गुरु बनाने लायक नहीं है। गुरु अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए गुरु नहीं बनता है, चमत्कार दिखा करके लोगों को, जादू टोना दिखा करके अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाता नहीं है कि मेरे पास आओ क्या चाहिए, ये लो बहुत, ये लो सोना निकाल दिया, वाह 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 भगवान है तो साक्षात है, कितने बड़े गुरु हैं, चमत्कार चमत्कार दिखाने वाला गुरु नहीं है, भगवान की शरण में ले जाने वाला गुरु है। चमत्कार दिखा करके पैसा भरना और प्रसिद्धि, वो गुरु नहीं हो सकता। तो चमत्कार दिखाने वाले बाबा ये सब गुरु नहीं है, एक छोटी सी भभूत निकालने से। फिर गुरु वो नहीं है जो स्वयं को भगवान बोले, वो तो भगवान से कंपटीशन कर रहा है, वो क्या गुरु बनेगा। गुरु है जो भगवान का दास रह करके हम सबको भगवान की शरण में ले जाए, ना कि वो व्यक्ति जो बोले मैं भी भगवान तुम भी भगवान, ये लो ये मंत्र करो तुम भी भगवान बन जाओ और मुझे पैसा दो मैं भी भगवान हूं, तो फिर पैसे की जरूरत क्या है आपको, यदि आप भगवान है तो फिर क्यों आपने धंधा किया हुआ है, यदि आप भगवान है आपको पैसे की जरूरत है भगवान बनने के बाद भी। तो ऐसे से बचिए, ये धोखे वाले हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं या बोलते हैं 6 महीने के अंदर तुम भगवान बन जाओगे ये मंत्र करके, तो भगवान बने नहीं जाते, भगवान भगवान होते हैं। फिर गुरु वो नहीं हो सकता जो हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करे, गुरुजी विपदा आ गई है बहुत बीमारी है, अच्छा ये ले बेटे मंत्र तेरी सब बीमारी दूर हो जाएगी, गुरु क्या डॉक्टर है, गुरु क्या फाइनेंस कंपनी चलाता है कि तुम्हारे पैसे का इंतजाम हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी? यह आध्यात्मिक गुरु का काम नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का काम आध्यात्मिक ज्ञान देना है, भगवान विषय में समझाना है, भगवान की शरण में ले जाना है, ना कि ओ जब से हमने गुरु स्वीकार किया है घर में हमारे लक्ष्मी जी आ गई है, धन संपत्ति आ गई है, अरे हम ही उस गुरु को बनाते हैं। अच्छा ऐसा हुआ, ठीक हमारी नौकरी भी लग जाएगी। तो जो शिष्य है इन भौतिक इच्छाओं से गुरु के पास जाते हैं वो शिष्य भी सही नहीं है, धोखे में रहना चाहते हैं, और उनको धोखे देने वाले ऐसे अनेक गुरु आते हैं जो भौतिक कामनाओं की पूरी करने के लिए करते हैं, तो वो गुरु नहीं है। गुरु जो भगवान की तरफ ले जाए। तो ये कुछ आधारभूत योग्यता है गुरु की। तो इसी भाव से ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला में आते हुए श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, उन्हीं श्रृंखला में आते हुए ये हमारा विनम्र प्रयास यहाँ है कि अपने गुरु महाराज के आदेश पर भगवान की वाणी को आप तक यथारूप हम ले जा सकें। इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए, और किसी अन्य हेतु से यहाँ पर हम नहीं आए हैं। भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारे गुरु महाराज हमसे प्रसन्न हो, इसी भावना को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कृपया करके आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माताएं हैं, तो कृपया विचारिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जीवन का सवाल है, भगवान को समझने का सवाल है। इसलिए सोच समझ करके कृपया करके ये भगवद गीता यथारूप एक बार शुरू से आखिर तक इसका अध्ययन कीजिए। जो ये विषय हम बता रहे हैं सूक्ष्म में, लेकिन और अधिक जानकारी की आवश्यकता है डिटेल में, तो कृपया करके ये यथारूप भगवद गीता तो 400 एडिशन है हमने आपको बताया, पर आज हमने बताया कि ये यथारूप क्यों इसको नाम दिया गया, क्योंकि बाकी अधिकतर भगवद गीताओं में लेखक अपनी अपनी बातें जोड़े हैं या तो योग्य नहीं है इन सभी योग्यताओं के आधार पर। इसलिए आप खुद निर्णय कीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि बस हमने बोला इसलिए आप मान लीजिए, आप खुद निर्णय कीजिए। एक बार इस पुस्तक को पढ़िए, या इस पर आधारित छोटी पुस्तकें भी हैं यदि आप सोचें कि बहुत बड़ी है, एक छोटी कोई पुस्तक भी लेकर के आप कृपया थोड़ा समय दीजिए, उसे पढ़िए और खुद निर्णय कीजिए सही क्या है, आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न यदि आपका है किसी का, सज्जन का या माता का, तो आप
प्रश्न यदि आपका है किसी का, तो हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का।